দেখা করতে একটু দেখা করতে কারণ ওই জন্য জন্য থাকতে ওই জন্য জন্য বেশ করতে হবে, সম্ভব নাই। হ্যাঁ ব্রজের না কোথাও নাই পরকীয়া ভাব, ভাব নেই পেলে স্বামীজিকে শিষ্য লোক হয়েছে ইন্দ্রবতী আলোচনা হয়েছে উনি সারা জীবন পড়া ক্যা গোলকে ধামনি তলে যথেষ্ট ব্রহ্মসংহিতা কাশ লোক গোলক 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 বাস আর কিছু নেই জানতে বোধে গোলকের গোকুল ভেদে ও শস্ত্র তীর্থ কাজ জল লাগ করকে স্বামীজিকে অভিযোগ করায় পুছনে হয় গোলক আর গোকুল বৃন্দাবনে ভেদ গিয়া মানে বলে হ্যাঁ গোলক পে রাধা কৃষ্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ তো ক্যা হ্যাঁ রাধা রানী ভি ললিতা বিশাখা চিত্র চম্পক লতা ভি সুদেবী রঙ্গদেবী ভূদেবী তুঙ্গবিদ্যা সবই কিন্তু উহা কেসা হ্যাঁ স্ট্যাচু হ্যাঁ মূর্তি হ্যাঁ সব জল সম্বন্ধ যেসে জল দেবত্ব হতে সক্রিয় ভাবনা হয় वहाँ प्रेम प्रीति का भी उत्कर्षता नहीं है। ब्रज में एकमात्र ये उत्कर्षता है, अभिमन्यु दास खड़े हुए और जटला कुटला खड़े हुए मुखरा आ गई और श्रीराम क्या श्रीराम श्रीराम घोष और कैसे मल्ल लोग खड़े हुए क्यों कि कौन है कृष्ण खुद ही अपने अपने एक प्रतिमूर्ति तैयार करके प्रीति के उत्कृष्टता को बढ़ाया परोपिया अर्थात श्रेष्ठ भावनाओं को चित्रवृत्ति को बनाया ऐसे बनाया उसके उत्कृष्टता को आस्वादन करने के लिए किसी का मेरे लालच थी किंतु स्वाभाविक प्रीति में स्वाभाविक मिलन में कोई प्रीति नहीं है। तो मैंने महापुरुष जी के श्लोक उठा करके बताया था वही कुरुक्षेत्र में प्रियम सोचरी उस श्लोक में बताया ना कुरुक्षेत्र में वो लोग जब मिलते हुए तो क्या किया महाप्रभु कीर्तन कर रहे साधारण सा कवि के श्लोक में रे बाजी बेटी तोड़ चले कहाँ जाकर के वो तुमर मैं दोनों हैं जबकि मिला था वेद के जंगल में और फिर अभी दोनों मिल रहे घर में क्योंकि ये आनंद नहीं है। क्यों महाप्रभु ये बात कहना चाहते हैं कि दोनों काम वही है किंतु स्वच्छंद प्रीति में मिलन में कोई प्रीति नहीं है। प्रीति का उत्कृष्टता कहाँ है जहाँ बहुत बाधा है। ब्रज में अगर को बुलाया बक कालिया पुतना सबको बुला दिया है दावानल आया क्या क्या बुलाया कारण क्या है नए 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 रूप में प्रीति का आस्वादन करने एक से में कोई आनंद नहीं है। तो बता रहे हैं ब्रज बिना कोथाओ नहीं परोक्ष भाव वैकुंठ लक्ष्मी सा सदा असत भाव वैकुंठ लक्ष्मी ये कोई नई नवीनतम कुछ भी नहीं है। एक से आया खाया पैर दाब दिया सुबह या पंखा चाल दी और कुछ कर दी इसमें कोई प्रीति का उत्कृष्टता नहीं है। ब्रज में कृष्ण जल प्रकट हुए आविर्भूत हुए तीसरे दिन क्या कर दिया बुला लाए किसको पुतना को पुतना आई सब लोग पहले तो कृष्ण हो गए बड़ा आनंद मनाया तीन दिन ये लोग थोड़ा भूल भाल गए सब लोग आनंद में है अपने में आनंद किंतु कृष्ण के प्रति प्रीति कम कृष्ण सुला दिया बैठक दिया गोद में दूध पिला रहे बात कर रहे हैं आनंद मना जैसे पुतना आई अब क्या हो गए बड़ा प्यार करने लगी फिर भी कृष्ण को छोड़ करके जा करके एक दिन घर में पूरी पकवान बनाने लग गए कृष्ण को शकट के नीचे सुला दी कृष्ण बोले अच्छा मैं तुम्हारा प्यारा नहीं बना मुझे अकेला छोड़ करके तुम लोग पूरी पकवान बना रहे घर के अंदर में जाकर के सब बस असुर को बुला दी शकट असुर और एक ठोकर लगाई शकट तो कहाँ चला गया कृष्ण चुपचाप नीचे पड़े हुए सब लोग हाय तुआ मचा कर जोग जोग आ गए आकर कृष्ण को गोदी उठा ली नए नए रूप से कृष्ण प्रीति आस्वादन करना चाहते सब लोग कृष्ण को अब गोदी से नहीं छोड़े और ब्राह्मण और पुजारी पंडित साधु संत सबको खिलाना पिलाना दान देना दक्षिणा देना क्या और मंत्र चाड़ना क्या क्या करना आसक्ति हुए ना इस प्रकार से आखिरी में कृष्ण लीला कर रहे हैं कभी शंकरचूर को बुला लिया कभी अरिष्टाचूर को बुला लिया क्यों इन लोगों को बुलाने से प्रतिज्ञा उत्कृष्टता बढ़ता है। रात में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अभी कोई आया मिलने के लिए, अभी मिलेंगे 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 और विछोड़न कर दिया, छटपट करके तड़प रहे हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, बोल करके छोड़ देते हैं। देखो क्या अवस्था होता है उनका, कैसे छटपटाते हो। और जब छटपटाते तब क्या बोलते हैं, मैं देख रहा था तुम्हारी प्रीति हमसे है कि नहीं, जब मैं तुमसे इतना प्रीति किया अब मैं छोड़ के देखता हूँ तुम्हारा हमारे अंदर में प्रीति है कि नहीं, तुम हमसे प्यार करते हो कि नहीं, उल्टा उल्टा बोलते हैं। उसको सदा बढ़ाते हैं, बोलते हैं वैकुंठ लक्ष्मी में ये सद्भाव नहीं है। कैसे बोले हैं, बोले रुक्मिणी देवी को महाराज कितने बार सुनाते हैं, कृष्ण एक बार द्वारका में बताया, रुक्मिणी तुम बड़े सुंदरी हो और मैं काला का रूप हूँ, तुम राजा की लड़की है और मैं ग्वालिया गमा का, हमारे पीछे तो राजा नहीं है, ऐसे ही हूँ मैं, और तुम्हारा अंदर सब सदगुण है, मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं, मैं निर्गुण हूँ, तुम गोरी है तो मैं काला का रूप हूँ। इस प्रकार से उनसे तुम यदि चाहती हो तो तुम्हारा शादी मैं शिशुपाल से कर दूँ, शिशुपाल मुझे नीचे दिखाने के लिए तुमको शादी कर लेगा, मैं तुमको लाया था छीन करके, किंतु ये मेरे लिए उचित नहीं हुआ, तुम्हारे जैसे योग्य मैं नहीं हूँ, जाओ तुमको मैं वहाँ भेज दूँ। रुक्मिणी सुनते ही काँपती 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 बिल्कुल ध्वस हो गई, गिर गई। और कृष्ण बोले ये प्रीति की कोई रीति नहीं जानती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं अभी, ये साधारण बिल्कुल साधारण है, यदि मैं प्रतिगोपियों को ऐसी करता तो वो एक नहीं दस सुना देते, जाओ तुम्हारे मन में तुम यहाँ से चले जाओ, आना नहीं कभी मेरे पास, तुमसे हमें क्या नहीं देना है, आया क्यों, तुम्हारा क्या खरीदा हुआ कोई नौकर नौकरानी हूँ, किससे बात कर रहे हो, आया क्यों यहाँ, निर्गुण हो तो जाओ गुणहीन ब्रह्मलोक में जाओ, पचास सुना देते। किंतु ये कहाँ है इन लोग अंदर में ये प्रक्रिया उत्कृष्टता। महाराज ने ब्रह्मचारी को थोड़ा डांट दिया, दस दिन प्रणाम करने नहीं गया था, पास में नहीं गया था, तो बोलते देखो ये हमारे आता नहीं हमारे पास, तुम्हें बोला विशेष क्यों आपने छेड़छाड़ कर दी, बोला क्यों ऐसे, तो मेरा ये स्वभाव है ब्रज के ऋषि, मैंने बोला ये सरल सच्चा गुरु के प्रति शिष्य क्या व्यवहार करेगा, सारा जीवन तो आप हम लोगों के साथ कैसे कैसा व्यवहार किया, और शिष्य के साथ तो व्यवहार करना कुछ तो भाई सीखो, ऐसे थोड़ी होता है शिष्य के साथ, किंतु क्या करे वो ब्रजवासी है, अब ब्रजवासी की भावना ज्यादा नहीं, उनको ठिठोटी करना छेड़छाड़ करना उल्टा पुल्टा बोलना उनका स्वभाव है, किंतु शिष्य तो समझेगा नहीं, गुरु के प्रति तो श्रद्धा रखना जरूरी होता है, वो तो गुरु से ठिठोली नहीं कर सकता है। किंतु ब्रजवासी लोगों का ये आत्मगत भाव है, रुक्मिणी द्वारका के द्वारका परिकर या और जगह के वैकुंठ के परिकर ये सब चीज जानते नहीं, एक बात करने से दस बात सुना दो तो खूब खुश, और कुछ नहीं बोलो चुपचाप रहो, और फिर उनके पास जाते आते रहो तो ठीक है, नहीं जा सकते नहीं आएंगे तो कहेंगे मनुष्य की नहीं है, देखो एक बार आता भी नहीं पास, अभिमानी है दाम्भिक से, तो देखो कहाँ है, अर्थात साब एक सच्चा प्रीति निर्मल प्रीति में उसके अंदर में क्या है रस का उत्कृष्टता विशिष्ट रहता है, किंतु साधारण जीव इस बातों के अंदर में अजली साधारण जीव ऐसे हाँ जी करेंगे गुरु वर्गों से तो सीमा अतिक्रम करने से मर्यादा लंघन करने से फिर वो डूब जाएगा, वो भी एक स्थिति है, आत्मगत तो भाव संबंध होना चाहिए, उस समय कोई नाराज नहीं होगा, हमें तो मर्यादा लंघन करके कुछ बोलने भी जाएंगे वो भी अपराध जाएगा, वो भी सीमा के अतिरिक्त नहीं। आप बता रहे हैं और सहजिया के प्रति कैसे हैं, संसारे जाते पुरुष रमणि आलम बन दोषे सदा रक्त मांस दे आरोप करी थे नारकी है सर्वदा। इस संसार में जितने पुरुष और स्त्री हैं उनके आश्रय आलम्बन विषय आलम्बन कुछ भी नहीं है, वो हाड़ मांस चमड़ा के रक्त मांस देह शरीर में ये आरोप करते हैं, इन चीजों को आरोप करके वो नारकी बनते हैं, बड़ा संक्षिप्त में बहुत कठिन बात बोल दिया, आश्रय आलम्बन अर्थात श्रीमती राधारानी विचार मन संग श्याम सुंदर। तो बोलते हैं इन लोगों के अंदर में ये जलभाव आरोप करना सदा के लिए दुखदायी और खराब चीज है। कोई यदि सत्मा शरीर के अंदर में ये आरोप करते हैं मैं गोपी हूँ, कृष्ण हमारे प्रियतम है, ऐसे यदि कोई आरोप करते हैं तो उनके लिए बड़ा दुखदायी अर्थात नारकी सर्वदा। ये शरीर कृष्ण के भोग्य योग्य नहीं है या ये मन उनके भोग्य योग्य नहीं है, आत्मा उनसे उनके समस्त सब कुछ है। क्योंकि ये आत्मा इस समय इस मांस चमड़ा शरीर के अंदर देह के अंदर में आसक्त है। इस आसक्ति को प्रीति को यदि हम धीरे धीरे करके धीरे करके अलग अलग करके भगवान प्रति लगा सके तो ये ठीक है, किंतु सहजिया लोग ये करते नहीं गोपी हूं। तो उसमें क्या होता है एक ब्रह्मवाद आ जाता है अहम ब्रह्मास्मि की तरफ। कैसे बोलते मैं गोपी मैं गोपी मैं गोपी मैं गोपी, तो लोग बोलते मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म। तो ब्रह्म ब्रह्म करने से यदि ब्रह्म बात हो जाता है अद्वित बात हो जाता है ब्रह्म बन नहीं सकता। यदि कहते मैं ब्रह्म हूँ तो दोषाभाव होता है, तो मैं गोपी कहने की दोषाभाव तो नहीं है। नहीं, मैं गोपियों के दास्य प्रार्थना करता हूँ, राधा दास से रही छाड़ी भोगी दास्य प्रार्थना आप कर सकते हैं कि वो आपको किस में लेंगे वो जाने उनके ऊपर इसको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं करके डायरेक्ट आप गोपी बनने जाएंगे तो नहीं होगा। तो इससे बताया हाँ मानस चमड़ा के शरीर कभी कुछ बन नहीं सकता। आत्मा का जो स्वभाव है नित्य धर्म है, आत्मा शुद्ध अवस्था में उस चीज को प्राप्त करेगा, उसके लिए कहने से ही वो चीज मिलेगा नहीं। और क्या अत तारा सहज साधने कृष्ण प्रभु कृपा जब पाए जल देह गंध चाड़िया से सब सीधानंद सीधाए। पता है यदि साधन करते करते यदि कृष्ण कृपा पाते हैं तो जल देह के गंध अर्थात आसक्ति ये सब चीज चला जाएगा, तब वो सीधानंद रस में मग्न होगा, नहीं तो सीधानंद रस में मग्न नहीं हो सकता है। बताया राय रामानंद स्वरूप दामोदर इन लोगों की प्रीति कैसा है, कैसे इन लोगों ने इस शरीर प्रवेश किया। तब बताया प्राकृत सहज श्री कृष्ण भजन करे रामानंद राय सुबह साधने जेते श्रीयुक्त वैराग्य भाई। देखो ये सब चीज बातों को बोलने में कितना कठिन हो, जब पुरी में महाप्रभु थे उस समय क्या एक मिश्र नाम भूल गया ओ महाप्रभु के निकट कुछ कृष्ण कथा सुनने आए, ओ कथा सुनने आए, तब उनको बोल दिया महाप्रभु जी ने मैं तो कृष्ण कथा नहीं जानता हूँ, एकमात्र रामानंद राय जानते हैं, आप उनके पास जाकर कथा सुनिए। विद्यानगर में जो कथा हुआ था वो सुनना चाहते थे, बोले आप उनसे सुनिए और वो अच्छे जानते हैं, उन्होंने मुझे समस्त इस तत्व का शिक्षा दिया सुनाया। हो गए जा करके बैठे हैं, सेवक बाहर बैठे थे, सेवक को पूछे अपने प्रभु से मैं कब मिल सकता हूँ, तो बैठिए मैं अंदर जाकर देखते हूँ। अंदर गए देखा वो अपने कार्य में कुछ व्यस्त है, आकर के बोले आप बैठिए थोड़ी देर बाद में मिलेंगे। बैठे 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 फिर पूछा उनसे बात करते करते वो क्या कर रहे हैं अंदर, तो अंदर में जगन्नाथ जी की जो देवदासियां हैं जो 15-16 साल के सुंदर युवती किशोरियां हैं उनके सारा शरीर के वस्त्र अलंकारों को खोल करके सारा शरीर में तेल मालिश कर रहे हैं और तेल मालिश करके स्नान करा रहे हैं, स्नान करा करके वस्त्र अलंकार आदि धारण कराया और धारण करा करके उनको नित्य कला शिक्षा दे रहे हैं। बोलते हैं महाप्रभु जी ने बतलाया कि दारू प्रकृति हरे मुनिरपि मन दुर्गार इंद्रिय करे विषय चर्वन, दारू प्रकृति हरे मुनिरपि मन। लकड़ी की यदि स्त्री की मूर्ति है उसके यदि पैर से छिले हो उससे चित्त संतर हो जाता है अरे राय रामानंद पंद्रह साल के किशोरी लड़कियां वो भी सारा शरीर कपड़ा उतार करके वस्त्र उतार करके उनको श्रृंगार करना कैसे, ये सब रस ग्रंथों में वर्णन दिया अपने कुछ कुमकुम में समस्त चित्त करना और सारा शरीर में कैसा अंगविलेपन होता है सब चीज करना और समस्त शरीर को मालिश करना स्पष्ट करके स्त्री जो और उनसे मेरे को महापुर बोलते कथा सुनने के लिए जो महापुर संन्यास लेकर के स्त्री नाम नहीं सुनना चाहते कान से दर्शन स्पर्श दूर रहे और इनसे सुनो सूर्य पात्र राजानंद आए बोले मैं क्या सेवा कर सकता नहीं मैं आपके दर्शन के लिए आया दर्शन कर ली बस छोड़ी अब आए कहा महाप्रभु का निकल महाप्रभु जी बोले दर्शन हुआ फिर महाप्रभु जी समझ गए क्यों जो व्यक्ति साधु संत या महापुरुष के निकट जाते हैं यदि उनके श्रद्धा के साथ में उनकी कृपा को ग्रहण किया वो तो प्रसन्न हो जाएगा और यदि उनके निकट जाकर के उनके अवगुणों या दोष देख करके आ गए तो समस्त उनके सर या दिमाग भार हो जाएगा और सब करो जी चित्त हो जाएगा खुद दुखी हो जाएगा। वैष्णव की प्रशंसा करना वैष्णव की निंदा करना बराबर है और वैष्णव की प्रशंसा करना और वैष्णव की निंदा करना ठीक है ये तो नियम है किंतु आज क्या किया आपने क्या किया तो वो बोलने लगे कैसे जो बात है अपने तो स्त्री की नाम नहीं सुनना चाहते हैं और वो ऐसे से करते हैं तब बतलाया मैं तो संन्यास लिया है मैं अपने को बचाने के लिए किंतु राय रामानंद संन्यासी के गुरु हैं उनका शरीर में आसक्ति नहीं है और शरीर क्या थी वो जानते नहीं है जानते हैं जगन्नाथ जी के देवदास के सेवा की शरीर क्या है उनकी सेवा करते हैं किंतु स्थित बुद्धि उनके अंदर में नहीं है रामानंद है ना व्यक्ति नहीं है ये सब चेतन चैतन्य में खूब अच्छी तरह से वर्णन किया तो वो रामानंद जी के लिए बताया है प्रकृति स्वभाव श्री कृष्ण भजन करे रामानंद राय वो रामानंद राय के लिए सम्भव है वो श्री कृष्ण भजन सहज रूप में करते हैं और सुबह साधन इजल अध्यय थे सुयुक्त वैराग्य भाई और सुबह सुबह साधन है इजल अध्यय थे जब इस जल शरीर में रहेंगे तो सुबह साधन विधि अर्थात नियम श्रृंखला के अनुजाई साधन करना पड़ेगा और सुयुक्त वैराग्य युक्त वैराग्य उसको युक्त नहीं सुयुक्त वैराग्य है इसको पालन करना पड़ेगा। विशुद्ध देते ब्रजे कृष्ण भजे महाप्रभु कृपा पाइया नाटक विनाय देवदास शिक्षा संग दोष सुन्न होइया रामानंद विशुद्ध शरीर में ब्रज में कृष्ण के भजन करते हैं उनका ये जड़ शरीर नहीं है महाप्रभु की कृपा पाए हैं उनने इसे नाटक अभिनय वो तो बाहर से अभिनय कर रहे हैं मैं देवदास को शिक्षा देता हूँ किंतु वो है कौन वो नित्य ब्रजवासी है अपराधित ब्रजवासी ब्रज तत्वों को जगत के सामने प्रकाश कर रहे हैं वो महाभाग्यशाली है उनके अंदर संगदोष नहीं है। भाई हमारा शरीर है बाकी तो पंच इंद्रिय तो पंच इंद्रिय कहीं भी रख दो पांच तत्व की चीजें ग्रहण करेगा उसके प्रति आप आकृष्ट होने से और उन तत्व से अलग होकर के हम यदि भगवान के चरण में पहुंचते हैं तो शरीर के साथ संबंध ही नहीं है शरीर क्या करेगा उपक्षोभित क्यों होगा एक लकड़ी पड़ा है उसको आप आंख के अंदर डाल देंगे तभी धधकता हुआ चलेगा और लकड़ी पड़ा है आप उसको छींचे नहीं मतलब ही नहीं तो लकड़ी क्यों जलेगी। ऐसे ही शरीर पड़ा है आपका शरीर के धर्म में शरीर के साथ संबंध नहीं है प्रभु के साथ संबंध है तो शरीर आपके लिए कोई तंग नहीं करेगा विकारग्रस्त नहीं होगा और शरीर के साथ संबंध है उस समय कुछ भी करने जाएंगे तो उस समय विचार होगा इसलिए बताते हैं अब रघुनाथ दास स्वामी के लिए अब बता रहे प्रीति शिक्षा में अधिकार किसका है रामानंद भिन्नताएं अधिकार रामानंद भिन्नताएं अधिकार रामानंद भिन्नताएं अधिकार क्यों नहीं पाया परस्पर्शन स्पर्श न सेवन बुद्धि हृदय आचार। उसमें किसका अधिकार है भाई? जो परस्पर दर्शन स्पर्श न सेवन, जिसके हृदय में ये है कि मैं दूसरे इच्छियों का दर्शन स्पर्श न सेवन करूंगा, ये बुद्धि जिसके अंदर है वो प्रीति की शिक्षा नहीं कर सकते। प्राणानंद राय एकमात्र अधिकारी है उनके अंदर में ये सब। परस्त्री या स्त्री है ये, पुरुष है, चामड़े का देला है, उनको ये सब ज्ञान नहीं है। ये जानते ये प्रभु के सेवक है, सेविका है, उनकी सेवा करते हैं प्रभु की प्रीति की जानते हैं। प्राकृतिक दोष और बुद्धि से रहित है वो प्रीति शिक्षा कर सकते। अब समझो, अब इन बातों को कहो किसी से, मुख्य वाले प्रेम प्रेम वो तेजियान सुंदर ग्रंथ अंतले बंधन, क्या बोलने से होगा प्रेम प्रेम? ये लोग नहीं जानते इन बातों को, बोलते हैं प्रीति शिक्षा जाने में निश्चय नहीं चार अधिकार। इन लोगों का भी स्त्री दर्शन स्वर्शन सेवन बुद्धि हृदय में है, उनका अधिकार नहीं है। हाँ बता रहे स्त्री पुरुष बुद्धि ठाकुर प्रीति साधन असंभव। कब हुए संसारे स्त्री पुंग व्यवहारे नए प्रीति धन चर्म सुख जत नित्य निश्चय नियत नए नित्य संगठन। इस संसार में जब तक स्त्री पुरुष व्यवहार रहेगा, ये स्त्री है ये पुरुष है मेरा भोग्य सामग्री है, ये जब तक ही व्यवहार रहेगा तब तक प्रीति धन अर्थात प्रीति की संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं होगा। चर्म सुख चमड़े का सुख अनित्य है, और ये नित्य संगठन अर्थात भगवान के साथ संबंध करने दिखा नहीं, असंभव बात है। गोपी बाबा दौरी चिद्धर्मा चोरी प्रीति शादी बेजे स्त्री पुरुष व्यवहार नहीं कतार भीतरे गोपी निशे। हाँ बताया गोपी भाव धोरी चिद्धर्मा चोरी गोपी भाव धारण कर और चिद्धर्म और गोपी भाव धारण करने जाएंगे तो कोई समस्त गुण पहले का जो गोपन सिद्धय को करना पड़ेगा, कोई नहीं जानेगा मैं क्या करता हूँ, और उधर क्या करेगा सपतिश करने भातृबान सजनों मार्ग्यपत्व सब छोड़ छाड़ कर निष्किंचन किंचन हो गए और तुमको विवाह धारण कर गुप्तों के शरणाश्रय किया, ये हमारे सर्वस्व है। तब सिद्धर्म आचरी प्रीति सिद्धर्म आत्मधर्म का आचरण करेगा, सभी धर्म से कोई मतलब नहीं, तब कहीं जाकर के प्रीति का साधन कर सकते हैं। स्त्री पुरुष व्यवहार उनके लिए हट जाएगा और भीतर में तब वो गोपन रूप में, वो भी गोपन रूप में कोई जाएगा नहीं क्या कर रहे हैं, कोई नहीं समझ सकते। ऊपर में उल्टा व्यवहार, भीतर में कुछ सोच चल रहा है, ऊपर में बड़ा कड़क है गिरिराज की तरफ, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की तरफ, बाहर में रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ बहुत कड़क, कोई भी से बांटता नहीं किससे मतलब नहीं लोकनाथ दास गोस्वामी की तरफ, भीतर में सर्वदा सेवा अंतर्निष्ठा कर वाइज्य लोक व्यवहार। बाहर सज्जन धर्माचरण आमरण वैधाचार, देखो पता है ना बाहर सज्जन धर्माचरण, बाहर में तो बड़ा सज्जन और धर्माचरण करेंगे और आमरण शरीर छोड़ना पर तक वैध आचार नियम श्रृंखला के पक्का, थोड़ा सा भी तस्मस नहीं होना है। अंतर से गोपी चित्त कृष्ण सेवे केवल प्रीति चार, और अंतर में वही ब्रज देवियों की भावना कृष्ण की सेवा की चरम उत्कृष्टता, केवल प्रीति चार केवल उनका प्रीति है। तो बताया जो कुमार और इत्यादि कविता केवल उपमा स्थल नायक नायिका चित्त स्वरूप भैया कृष्ण भजे सुनिर्मल। जो कुमार हर जो श्लोक में बोल रहा था महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे रथ यात्रा के समय, ये सब इसके लिए उदाहरण है। नायक नायिका चित्त स्वरूप भैया कृष्ण एकमात्र नायक है, श्रीमती राधे नायिका है और उनके चरणाश्रय करके अपना निर्मल भजन करना चाहिए। अब बोल रहे हैं जड़ देह में यदि ये आरोप करते हैं तो नरक और कली के ये छलना है। कैसे क्या यदि बोले यह आरोप अचिंता है पर पुरुष से श्री कृष्ण भजन उपाय, চৈতন্যায় আমি একথা না মানি, জলে তেরে বুদ্ধি নরক বলি মানি। ও যদি বলতেন ভাই পরপুরুষ ইন্টারনাল পরমাত্মা হ্যাঁ, কৃষ্ণ হ্যাঁ, মে গোপী হ্যাঁ, জেসে বাবা যদি রাজ করছে আমি রাধে তুমি শ্যাম, আর গৃহস্থকে দূরে পতি আচ্ছা বড় রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম উড়ায় দূরে স্ত্রী আর বাবাজি হাত পকালে রাস করে কে তুমি রাধে আমি শ্যাম। তো ও গৃহস্থে বলে আমি কান্দে লাঠি বলরাম, হ্যাঁ দিব তোমার ধমাধম আর ভাঙব তোমার উদ্যম। বিলকুল তো এসেই কই যদি আরোপ করতে হ্যাঁ কি ইয়ে পরপুরুষ ইয়ে কৃষ্ণ হ্যাঁ, আর বলতে নেই মানে চৈতন্য মহাপ্রভু আজ্ঞা আছে এসব মেনে মানতাম, মেনে মানতা ইসে দরকি মানে চৈতন্য প্রভু কা নাম নিয়ে লেতে হ্যাঁ, নিত্যানন্দ প্রভু কা নাম নিয়ে লেতে হ্যাঁ, ইয়ে লোক উনসে চিড়তে হ্যাঁ ডরতে হ্যাঁ, উনকা ভজন করনা পাপে পাপ, হম ব্রজি গোপী হুয়ে ভজন করেন লীলা করেন, ভিতর মে প্রেম হ্যাঁ হম বাহার মে প্রেম নী করেন, রস তো নেই কিয়া তো সমঝেন কাহ সে বলতে কে ইয়ে জল চে এরূপ বুদ্ধি নরক বলি মানি, জল মে এসা বুদ্ধি যো করতে নরক যন্ত্রণা হ্যাঁ, জগদে চিদারোপ সঙ্গ তুচ্ছ অতি তাহে কৃষ্ণ ভাবনা সম সমূহ দুর্মতি। জল ধর্মে যদি কই চিত আরোপ করতে হ্যাঁ অর্থাৎ ভগবান সচ্চিদ আনন্দ ইসকা যদি আরোপ করতে হ্যাঁ ও ক্যা হতা ইসকো উসকা ধর্মে কৃষ্ণ ভাবনা ও দুর্মতি অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি হ্যাঁ, কলে ছড়ানায় জানিও নিশ্চয় ইয়াতে বৈষ্ণব ধর্ম অধঃপতি যায়, এই কলিকা ছড়ানা হ্যাঁ শিষ্যে বৈষ্ণব ধর্ম অধঃপত্নী জায়গা, সুকৃতি পুরুষ মাত্র উপমা বুঝিয়া শিব প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ ভজে গিয়া, তো সুকৃতিশালী পুরুষ হ্যাঁ ইস বাত সমঝ করকে অপ্রাকৃত দেহ মে যা করকে কৃষ্ণ কা ভজন করেনি, ও নরক কে লিয়ে ছড়ানা নেই করেনি, ক্যা ক্যা উসকে লিয়ে উপমা দিয়া হ্যায় ভক্তিম ঠাকুর তো বাউল কীর্তন মে সীতা বল দিয়া নাকে তিলক গলায় মালা ইয়াতে এক কলির চালা, দেখতে বৈষ্ণবের মতো আসল সাক্ত কাজের বেলা সঙ্গে লে ঘুরছি মামু দেখাবার পরের বেলা, ইয়াতে এক কলির চালা ক্যা ক্যা বাউল কীর্তন মে ভক্তিম ঠাকুর কে লেখরি মে ওফ কেসে কেসে লিখতে রাখছে কিন্তু আম ও সব পড়েনি নেই ও সব পড়েছে জীবন কা ওই ঘাস কাটতে কাটতে দুদিন চলে গেল তো প্রেম কব করেনি, আমলোক উদাহরণ দিই কিন্তু গুরুবর্গ কি বাত শুনলি নেই কাহা গুরুবর্গ এই জল চলছে অতি আরাম উনকো অনুকরণ করেন আমার আবি বলতে চাকরির তোকে চাকরিকারকে হাত ধোনা শিখা নেন, ও বলতে আমি তো প্রেম করেন কিছু প্রেম করে না, ও কুছ দিন পেলে এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কা এক সর্দার কা লড়কা দিল্লি সে খবর ভেজা মেয়ে বৃন্দাবন আনা চাহতা হুম, তো কেউ মেয়ে বৃন্দাবন মে কৃষ্ণ বৃন্দাবন আয়া থে গোপীয় সে প্রেম কিয়া থা তো মেয়ে বৃন্দাবন মে আগে প্রেম করু প্রেম শিক্ষা করুঙ্গা, আর ওহা বহুত গোপিয়া হ্যাঁ উন লোক সাথ মে প্রেম করুঙ্গা, তো মেয়ে সে বৃন্দাবন আনা চাহতা হুম, মেয়ে কেউ তোমারা দিল্লি মে গোপী নেই হ্যাঁ তোমার সর্দার মে কই মিলতা নেই হ্যাঁ, অর্থাৎ ও দেখতা না নোটং কি কাম হোগা টিভি মিভি মে নিকলতা হোগা ইয়া পেপার মে কই হোগা সব শুনতে জানতে তো সোচতে ইয়ে কৃষ্ণ ভি কই পুরুষ ভি হোগা প্রাকৃত ও ভি এসা কিয়া তো হম হম কোন সা আমারা ক্যা পুরাই গেছে দেখতে বতাতে হ্যাঁ ভাই ইয়ে বৈষ্ণব ধর্ম নেই ইয়ে হতপত অর্থাৎ নরক হে সিয় অপ্রাকৃত অপ্রাকৃত শরীর মে যাকরে কৃষ্ণ কা ভজন করো, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আদি মহাজন পূর্ব বুদ্ধি দূরে রাখি করিল ভোজ ভজন, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এসব মহাজন লোক পূর্ব বুদ্ধি অর্থাৎ শরীর বুদ্ধি জড় বুদ্ধি কো দূর করকে আর উসে ফেক করকে তব কৃষ্ণ কা ভজন কিয়া, জড় শরীর মে আসক্তি হে আবি এক সুই কলে জানে সে কিতনা দর্দ হতা হ্যায় চিত্ত আবি কিছু দেখ কর উতল পুতল হো জাতা হ্যায় নেই, শেষবার শেষ বাক্য চিন্ময় প্রীতি তো আছে তবু নাই বুঝে দুষ্কৃতি রীতি, অন্য কে যে বাক্য হ্যাঁ চিন্ময় প্রীতি কি শব্দ হ্যাঁ ও সাধারণ দুষ্কৃতি ব্যক্তি ও রীতি কো নেই সমাজ দেয় प्रभुनाथ विषय कर विचार तुम एन भक्त प्रचार दिव्य सदाचार। तो अक्षरधाम प्रभु बताते रघुनाथ तुम इन विषय को विचार करो, तुम्हारे जैसे भक्त ही सदाचार का प्रचार कर सकते हैं। जीवन में रस क्या है, नमक जीवा को दिया नहीं इस शरीर के लिए, तब तो प्रचार कर सकता है, भजन कर सकता है। इसलिए ये विषय एक बार प्रभु के जानाइया चित्त दृढ़ कर लो दृढ़ कर रहिया, मत एक बार प्रभु के विषय को पूछ लो। मैं तो तुमको बोल ही दिया, अब प्रभु से एक बार पूछ लो चेतन महाप्रभु से और उसको दृढ़ कर लो। तब रघुनाथ सिंह प्रभुपद गया ठार ठार जिज्ञासिल अभिनीत हैया। तब रघुनाथ शांत डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, गए महाप्रभु जी के निकट ठार ठार इशारे से पूछा, नम्र विनय होकर के, क्या कि प्रभु आज्ञा दो, किसे घर छुड़ाया, किसने ले आए, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए, मैं तो कुछ जानता नहीं। महापुरुष ने उत्तर दे दी,